also came. Celebrate with joy and happiness.
Oh, dekho kon aaya, saath baba bhi aaya. Chhoon chhoon na chhoon. Dekho kon aaya, saath baba bhi aaya. Shiva and Baba together.
You are the ocean of love.
शांति। आज का टॉपिक है आई लव मुरली। तो आज हम देखेंगे लौकिक और अलौकिक मीनिंग मुरली का। तो श्री कृष्ण की अगर लीलाएं देखी जाए तो उसमें एक एपिसोड ये भी है कि जब वो नन्ना सा कृष्ण एक मुरली बजाने वाले, मुरली बेचने वाले के पीछे पीछे जाता है और आकर्षित होता है, कहता है कि मैं भी इसे बजाऊंगा। तो बेचने वाला तो खुश हो जाता है कि उसको तो एक ग्राहक मिल गया। वो उस नन्हे कृष्ण के हाथ में वो लकड़ी वाली मुरली सौंपता है और फिर अब वो कैसे बजानी है दिखाया गया कि उस नन्हे कृष्ण को पता नहीं है। तो उसकी विधि वो बताता है, क्या विधि है, तो उस मुरली में कैसे सात सुरों को बजाना है वो उसको विधि बताता है। फिर सरस्वती माँ का आह्वान करने के लिए बताता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, मुरली की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे थे, तो सरस्वती माँ का आह्वान कैसे करना है। तो वो उस नन्हे कृष्ण को बताता है कि हाथ जोड़ो, आंखें बंद कर लो और आह्वान करो, हे सरस्वती माँ आओ और आप मेरे इस मुरली में बस जाओ। उस सातों सुरों का ज्ञान जैसे कि उनमें आ जाता है, उसी तरह शिव बाबा भी आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती को रचते हैं और फिर उनके द्वारा हम बच्चों को रचते हैं। उस काठ की मुरली को बजाने के लिए सात सुरों की नॉलेज होना जरूरी है, सरस्वती का आह्वान जरूरी है, तब जाके आप उस मधुर धुन को उस काठ की मुरली पर बजा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी मुरली है और वो कौन से सात सुर है जिसका आह्वान करना पड़ेगा विधिपूर्वक, फिर उस सरस्वती माँ का भी आह्वान करना पड़ेगा, और फिर वो कैसे हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, और फिर वो मुरली कैसे उस मुरलीधर के हमें नज़दीक ले जाएंगे, और हम कैसे उस मुरली से होने वाली प्राप्तियाँ खजाने प्राप्त करेंगे आने वाले भविष्य जन्मों के लिए नहीं, लेकिन इस वर्तमान समय में भी हम कैसे माला माल हो जाएंगे। तो ये मुरली क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मुरली है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, रूहानी न्यूज़लेटर, ज्ञान मुरली। तो आज हम देखेंगे उसकी विशेषताएं, उस मुरली से होने वाले लाभ। एक तो होता है मुरली सुनना, सुनाना और पढ़ना। तो पहले तो हम मुरली सुनते ही है सेंटर पर, जब 7 डेज का कोर्स होता है तो पहले तो मुरली सुनते हैं, फिर सुनने के बाद पढ़ते हैं, फिर उसमें और रुचि आती है और फिर हम सुनाना भी शुरू कर देते हैं। तो ये है प्रोसीजर। तो लौकिक में दिखाया गया है श्री कृष्ण की लीलाएं कि कैसे श्री कृष्ण ने वो काठ की मुरली बजाई, और केवल वो गोपिकाएं ही नहीं लेकिन प्रकृति, पशु पंछी, वो गायें भी कैसे दौड़ दौड़ के आती थी कृष्ण के पास, और मोर हंस कैसे दौड़ दौड़ के आते थे और वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो सबसे नज़दीक कौन था उस मुरलीधर के? राधा गोपिकाएं। तो जब मुरली क्लास शुरू होने वाला होता है तब वो देखने का समय होता है, ब्राह्मण बच्चे कैसे दौड़ दौड़ के आते हैं, कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कोई साइकिल पे आता है, कोई पैदल आता है, या हम मधुबन में देखते हैं कोई पीस पार्क से आता है, कोई ज्ञान सरोवर से आता है, कोई ग्लोबल से आता है, कोई म्यूजियम से आते हैं, कोई आबू से आते हैं, चाहे बारिश है कोई ठंडी है, तो भी सारे अपने कामकाज को देखते हुए दौड़े दौड़े मुरलीधर की मुरली सुनने के लिए आते। लेकिन आज तो समय बदल गया है, आज मुरली लाइव है, अभी मुरली हर एक के पास पहुंच रही है। बस YouTube में मुरली डालो, पांडव भवन की मुरली, शांतिवन की मुरली, ज्ञान सरोवर की मुरली, दिल्ली ORC की मुरली, हर सेंटर क्या है, लाइव हो गया है, और हर एक के घर घर में मुरली पहुंच गई है। हर सेंटर क्या बन गया है? स्टूडियो बन गया है। और हर घर क्या बन गया है? सेवा केंद्र बन गया है, जहां पर मुरली जा हर मोबाइल स्टूडेंट बन गया है। मोबाइल स्टूडेंट नहीं होता है, स्टूडेंट उस चलाने वाले को बनना पड़ेगा। तो अभी हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट है, मुरली सुनने के लिए रेडी है। तो अच्छे स्टूडेंट की निशानियां क्या होती है? हाँ, रेगुलर, पंक्चुअल, उसका स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, और उसके पास क्या होता है? नोटबुक होती है अच्छे अच्छे पेन होते हैं, और हाँ कलर पेन, हाईलाइट पेन होते हैं। तो मेरे जीवन में मुरली कैसे आई? जब मैं स्कूल में भी नहीं गया था लौकिक में, तभी से हमारी जो निमित्त टीचर बहन थे उन्होंने मुझे मुरली से ही कैसे पढ़ाना शुरू किया। पहली भाषा में सीखा हिंदी, और बहन जी कहीं जाते थे, अकेले ही होते थे तो मुझे ही बिठा के जाते थे। मुझे याद है मैं मुरली जोर जोर से पढ़ता था संगली पर बैठकर, और जब उसमें कुछ बातें आती थी कि जैसे कुछ अविक्तवान या क्रोध के ऊपर होती थी, तो मुझे ऐसे लगता था अंदर से कि ये तो इन लोगों को क्रोध आता है ना, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मुझे भी आता है। लेकिन उस समय मुझे अच्छे से याद है कि मैं सामने वाले के ऊपर पूरा फोकस करता था, क्रोध तो आपको आता है ना, क्रोध मुझे तो आता ही नहीं। और सब कहते हैं कि हाँ ये तो कितना वो नहीं बताऊंगा। तो ये जो मुरली है इसकी एक विधि है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। जैसे शास्त्रों में, सत्संग में लोग जाते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो वहाँ उनको क्या होता है, वो स्मृति नहीं होती है जो हमारे पास है। वो कहते हैं कि ये भगवान के महावाक्य है, भगवान वाच है, गीता में लिखा हुआ। लेकिन वो ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ ये भगवान ने किसको कहा है, अर्जुन को कहा है। क्या कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या है? नरक के द्वार है। तो ये भगवान ने अर्जुन को कहा है, हमें तो कहा नहीं, तो बस सुनना है और उठ के चले जाना है। लेकिन यहाँ हमें बाबा ने यह स्मृति दिलाई है कि हे अर्जुन, कौन हो? हाँ मैं हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं अर्जुन हूँ। बाबा का हर एक वाक्य मेरे लिए है, न कि क्रोध तो इनको आता है, हाँ कल ये गलती आपने की थी ना, देखो आपके गलती का उत्तर बाबा ने आज दिया है। देखो देखो दूसरे मुरली दूसरे पेज पर है, हम उसको जाके दिखा भी देंगे कि देखो आज बाबा ने आपके लिए क्या कहा है। मेरे लिए क्या कहा? भूल गए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने देखा प्रैक्टिकल में दादी गुलजार। जब मैं ज्ञान सरोवर में सेवा कर रहा था और बाबा मिलन के दूसरे दिन ही दादी ऊपर आए थे और डबल विदेशियों से मिलना था दादियों को, तो मैं बिल्कुल वीडियो वाले जहाँ बैठते हैं उनके पास वाली सीट पे बैठा था, दादी के फ्रंट में। और दादी की क्लास शुरू हुई और दादी ने शुरुआत की कि देखो कल बाबा आया और कहा, बाबा ने कहा बच्ची आपको ऐसे करना है। मैं तो वंडर खा गया कि बच्ची तो बाबा के सामने थी ही नहीं, बाबा के सामने तो हम बैठे थे, और बाबा दादी ऐसे सुना रही है जैसे वो मुरली कल बाबा ने सुनाई थी, वो मेरे लिए बाबा ने क्या कहा, खुद के लिए। इतनी बड़ी दादी, अब क्लास करानी है तो दादी करा सकती है ना कि कल बाबा ने ऐसे कहा, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो दादी की ये लैंग्वेज थी ही नहीं कि आपको ये करना है, बाबा ने ये कहा है और आपको ये करना है, ये लैंग्वेज थी ही नहीं। दादी ने कहा कल बाबा आए और बाबा ने कहा बच्ची आपको ऐसे करना है। तो ये जो मुरली है, बच्ची तो सामने थी भी नहीं, दादी ने तो बाद में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन इतने कम समय में दादी सारी मुरली लर्न करके आई थी, पढ़ के आई थी। हम तो सम्मुख थे बाबा के, तो भी हम कई बातें भूल गए थे बाबा ने कल रात को क्या कहा, लेकिन दादी पूरी मुरली लर्न करके आई थी बाय हर्ट, और एक एक महावाक्य एक्सप्लेन कर रही थी। तो अब हम इस मुरली की हिस्ट्री देखेंगे। शुरू में जब बाबा की पद्रामणि हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उस समय खुद ब्रह्मा बाबा को भी कई बातें क्लियर नहीं थी। तो शुरू में बाबा ने जो सत्संग स्टार्ट किया था तो गोरखपुर से बाबा ने गीता मंगवाई थी कि चलो अब ये सत्संग है अपना, तो सबको बांट भी दी थी। बाबा गीता खोल के बैठ भी जाते थे, लेकिन क्या होता था, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और बाबा कुछ बातें सुना के जाते थे। और फिर बाद में बाबा देखते थे कि अरे ये तो सामने रखा है और इसको पढ़ना तो मैं रह ही गया, भूल ही गया। तो फिर उस मुरली की जो शुरुआत हुई उस सत्संग में, तो उससे बड़े हंगामे हो गए पहले, तो लोग आने लगे कि ये दादा क्या सिखा रहे हैं कि मांस मच्छी नहीं खानी है, पवित्र रहना है, तो आप ये नहीं सिखाओ ना, आपकी बाकी बातें तो बहुत अच्छी है, सत्संग भले करो आप, लेकिन वो लोग राय देने लगे। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने इस मुरली में कभी अपनी मन मत मिक्स नहीं की, या पर मत में आकर उन्होंने बस ये बताया कि ये तो उसका डायरेक्शन है, वो उसने बताया हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हमारे पास कोई आ जाते हैं नए जिज्ञासु, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ हमें तो बाहर का खाना पड़ता है, क्या करें, तो हम तुरंत राय बहादुर बन जाते हैं और उसको अपनी राय देने लग पड़ते। तो ये मुरली क्या है, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य है, इसमें हमें मन मत मिक्स नहीं करनी है, उसको एज इट इज, जो उसका भाव है, जो लहर है, जो बाबा ने सुनाया हुआ, उसमें अपनी मन मत मिक्स करके, अपने कुछ एग्जाम्पल सुना के उसका रूप नहीं बदल देना है, यथा योग्य। ऐसे नहीं कि बाबा के वो महावाक्य ही भूल जाए सामने वाला और आपका एग्जाम्पल ही उसकी बुद्धि में घूमता रहे, तो ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। फिर इस मुरली का रूप चेंज हुआ कि बाबा ने क्या किया, कुछ दिन शिव बाबा ने मम्मा बाबा को भी आगे बिठाया और किसी अन्य दादी के तन में बाबा आए, फिर लेटर द्वारा भी बाबा क्या करते थे, जो अलग अलग स्थान पर रहते थे बच्चे, तो उन तक मुरली पहुंचाते थे, लिखते थे बाबा, तो उसको पीयू की मुरली कहा गया, पीयू की मुरली चली। फिर मुरली जो है स्टार्ट होती थी साकार में, तो गीत के ऊपर पहले गीत बजाया जाता था, तो उस गीत के बारे में भी शिव बाबा के महावाक्य है कि बाबा ने उन बच्चों को टचिंग कराई, गीत लिखने वालों को, बनाने वालों को, और वो खास गीत बाबा ने बनवाए हुए शिव बाबा ने, तो वो गीत बजाकर गीत के ऊपर बाबा मुरली चलाने लगे, फिर गीत बजाते थे, फिर बाबा एक्सप्लेन करते थे, फिर गीत बजाने के लिए कहते थे। फिर मुरली के स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे, फिर प्रश्न उत्तर, फिर गीत, ओम शांति से शुरुआत होती है, फिर मुरली चलती है, मुरली में कई राज, कई बातें बाबा हमें समझाते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की बातें हमें बताते हैं, आने वाली दुनिया कैसी होगी, फिर वर्तमान समय कैसे समय चल रहा है, कैसे समय आएगा, तो हमें कैसे संभल कर रहना है, और भूतकाल में हुए विकर्मों का, पाप कर्मों का बोझ जो मुझ आत्मा पर है, उसको कैसे भस्म करना है, ये सारी बातें हमें बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें उसमें सुनाते हैं। और क्या मुरली में हम सुनते हैं, सारी दुनिया की न्यूज़ उस मुरली में होती है। ये मुरली की भाषा कौन सी होती है, सारी भाषा में ये मुरली है, प्यार की भाषा तो है ही, परमात्म लैंग्वेज है ही, लेकिन दुनिया के कोने कोने में आज मुरली जाती है, ऐप भी बने हुए हैं, जिसको जो भाषा आती है उसको उस भाषा में मुरली की व्यवस्था बाबा ने कर दी है। फिर बाद में आजकल जैसे याद प्यार के बाद हम देखते हैं धारणा के लिए मुख्य सार होता है, दो पॉइंट होती है, फिर उसके बाद वरदान होता है, फिर उसके बाद स्लोगन होता है, तो कुछ समय बाद फरमान शुरू हुआ। तो ये फरमान शब्द थोड़ा कईयों को लगा कि देखो भगवान का फरमान है और अगर हम वो नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा, तो फिर थोड़ा सहूलियत दी गई, उस फरमान शब्द को हटाया गया और उसकी जगह वरदान शब्द लिखा गया कि ये बाबा का क्या है, वरदान है। वो जो डर है उसको निकाला गया। फिर ये वरदान बनता कैसे है, जो मुरली तो साकार मुरली होती है, तो ये वरदान बनता है अव्यक्त मुरली से, जो दीदी मनमोहिनी जी ने राजू भाई जी को जिम्मेवारी सौंपी, दीदी ने खुद भी बनाए। तो जो अव्यक्त मुरलियाँ चली, उस अव्यक्त मुरलियों से क्या किया जाता है, पावरफुल उस जो साकार मुरली चली है उस आधार से अव्यक्त वाणी की कुछ चार लाइनें निकाली जाती है और उसको आलंकारिक रूप में, उस चार लाइन का आलंकारिक रूप में बना के भव। फिर बाद में है स्लोगन। तो जब दादी गुलजार इस मुरली का इम्पोर्टेंस महत्व समझाती है तो स्टार्ट करती है कि देखो मीठे बच्चे, पूरी मुरली याद नहीं रहता तो कम से कम मीठे बच्चे तो याद में रखो, चाहे उम्र हो गई है, बुजुर्ग है, या कोई दवा बीमारी की वजह से कोई दवा खा रहे हैं, तो हर एक की बुद्धि इतनी नहीं होती है कि जो सारी बातें याद रख सके, पूरी मुरली याद रख सके, तो कम से कम मीठे बच्चे याद रखो। तो दादी कहते नहीं, मीठे बच्चे याद रहता तो क्या याद रखो, प्रश्न उत्तर याद रखो, प्रश्न उत्तर नहीं तो कम से कम मुरली का गीत क्या था आज का, कौन से गीत पर बाबा ने एक्सप्लेन किया। चलो वो याद नहीं रहता है तो धारणा के लिए मुख्य सार जो दो पॉइंट होते हैं उसको याद रखो, पूरी मुरली का वो क्या होता है, सार होता है, तो उसको याद रखने का प्रयास करो। फिर कहा कि नहीं ये भी नहीं याद रहता तो वरदान को याद करो। फिर कहा वरदान भी कभी कभी क्लिष्ट हो जाता है, नहीं याद रह पाता, तो स्लोगन तो क्या होता है, पूरी एक लाइन भी नहीं होता, आधी लाइन ही होता है, तो उसको याद रखो। फिर वो भी याद नहीं रहता कोई एक तो शब्द याद रखो मुरली का। तो दादी इतना प्यार से समझाती है जो हृदय विदीर्ण हो जाता है कि सचमुच दादी का मुरली से कितना प्यार है। और देखो जिस व्यक्ति से प्यार होता है तो उसकी हर बात से क्या होता है, प्यार होता है, लगाव होता है। तो ये बात स्नेह की है। जब हम बड़ों को सुनते हैं, जब टॉपिक मिला और सर्च किया, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। दादी गुलजार हो, दादी जानकी हो, बड़ी दादी हो, जगदीश भाई जी हो, जब हम डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते थे, बड़े चात्रक होके डायमंड हॉल में बैठ के बाबा के सामने मुरलियाँ सुनी, खुश हुए, बाबा ने हाथ उठाया, हमने हाथ उठाए, लेकिन जब दूसरे दिन हम बैठ जाते थे भाई साहब के सामने, रमेश भाई जी के सामने, तब पता चलता था कि कल तो बाबा की जो मुरली चली हमें तो बस प्यार का ही रूप दिखाई दिया, लेकिन ऑफिशियल रूप क्या था कल बाबा का वो हमें दूसरे दिन पता पड़ता जब हम रमेश भाई जी को सुनते। कितना ऑफिशियली वो खुद सुनते थे और हमें एक्सप्लेन भी करते थे। शुरुआत होती थी, वो डायरी अपनी खोलते थे, कल ये तारीख थी और इतने बजकर इतने मिनट पर बाप दादा की पदरामनी हुई, दादी कितने मिनट में पहुंची, दादी ऊपर कब गई, फिर बाबा नीचे कब आए, मुरली कब खत्म हुई, पूरा टाइम टू टाइम वो बताते। फिर लास्ट लास्ट में हमने देखा कि बाप दादा कुछ बातें रिपीट रिपीट कर रहे थे, कुछ मुरली चली दिल्ली में तो कुछ मुरलियाँ चली माला पर, माला माला मन के हाँ, तो बाप के दिल में कौन, बच्चों के दिल में कौन, रिपीट रिपीट रिपीट, एक शब्द बाबा ने 50-60 बार भी रिपीट किया। तो हमने सूरज भाई जी से भी सुना तो हंसी मजाक भी हुआ कि चलो बाबा बुजुर्ग हो गए ना अभी, लेकिन रमेश भाई जी ने सुनाया कि बाबा तो बुजुर्ग नहीं हुए हैं, बाबा क्या हो कर रहे हैं, हमें हैमरिंग कर रहे हैं, जैसे हैमर हैमरिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई मूर्ति बनानी होती है तो उसके ऊपर मेहनत की जाती है, हथौड़ा लगाया जाता है। हम इतने बुद्धू हैं इसलिए बाबा को, उस टीचर को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। टीचर टीचर में भी अंतर होता है, बालवाड़ी का टीचर और पीएचडी का टीचर, पीएचडी जब करते हैं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं उस समय जो फैकल्टी सामने होती है तो कितना अंतर होता है। जो बालवाड़ी का टीचर होता है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर उस बच्चे का नाक आता है तो उसको तुरंत भाग के उसका नाक भी साफ करना पड़ता है, है ना। तो हर बात को ध्यान कर देना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह हमें अभी तक बालवाड़ी के टीचर है या उस लेवल पर पहुंचे हैं, हाँ, कि बाबा ने लेक्चर दिया और चल पड़ा। तो देखो बाबा ने ये मुरली जो चलाई है, पीयू की मुरली और कितनी सारी मुरलियाँ बाबा ने हमारे लिए चलाई, डायमंड हॉल की भी मुरलियाँ देखी, ओम शांति भवन की मुरलियाँ देखी, कि कैसे रूप बाबा का टीचर, बाबा कैसे हाई फाई प्रोफेसर बनते बनते अब लायू ही चला रहा है ऊपर से। पहले हम कहते थे प्रीतम आ न मिलो, और अभी क्या हो गया है, प्रीतम ऑनलाइन मिलो। सारा रूप ही चेंज हो गया है। वो टीचर उधर बैठ के तो हमें नहीं पढ़ा रहा है, तो अभी हमें सम्मुख जाना है, तो उसके लिए उतना प्यार होना चाहिए। तो हम कहाँ पर थे कि जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज प्यारी लगती है, उसका हर तोतला शब्द अच्छा लगता है, और जिससे प्यार ही नहीं होता है, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा ही नहीं लगता है, तो उसकी बातें ही हमारे कान से अंदर नहीं जाती, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे हम मम्मा को देखेंगे, तो मम्मा जब बाबा के बारे में कुछ सुनाती है, बाबा कहती है, तो उस बाबा कहने में कितना प्यार समाया हुआ है। उस प्यार के साथ साथ वो स्मृति है कि वो धर्मराज है, वो टीचर है, वो परसेंटेज दिखाई देती है उस बाबा कहने में। मम्मा सिर्फ बाबा कभी नहीं कहती, उसके पहले क्या संबोधन करती है, प्राणेश्वर प्रियतम, जो अव्यक्त मूल्या चली उसमें भी हम देखते हैं जगदीश भाई जी ने कितना अच्छे से कंपाइल किया है, कि आज कौन से बच्चे मुरली जो चली है, तो पांडवपति बाप पांडवों से बात कर रहे हैं, तो कितने सुंदर सुंदर टाइटल उन्होंने बाबा को दिए। तो इस किस आधार पे दिए, उस परमात्म प्यार के आधार पर दिए। मैंने और एक बात नोटिस की, हमारे भी जो बहन जी थे जो अभी पुणे में है, तो वो हमेशा अपने भाषण की शुरुआत करेंगे तो एक शब्द यूज करेंगे, कल्याणकारी, कल्याणकारी शिव पिता की हम सब संतान। तो वो शब्द सुनते ही जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते, कितने स्मृति के साथ अवेयरनेस के साथ उस शब्द का उच्चारण होता है। जब जिस व्यक्ति से प्यार होता है उसका एक नाम होता है, लेकिन फिर भी माता पिता उसको अलग से नाम देते हैं, आगे जाके वो टीचर का प्यारा बनता है तो टीचर भी अपनी तरफ से उसको कोई अलग नाम दे देते हैं, चिंटू पिंटू। तो उसी तरह भगवान का भी हमसे प्यार है, और हमें वो कौन सा शब्द हमारे लिए यूज करते हैं, मीठे बच्चे, वो तो करते हैं, लेकिन हमने बाबा को अपनी तरफ से कौन सा नाम दिया हुआ है। आज हम चेक करेंगे कि जैसे लवर होते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आई लव मुरली, तो लवर आपस में कौन कौन से शब्द संबोधन करते हैं पर्सनल मीटिंग में, तो मुरली पर्सनल मीटिंग है बाबा की और मेरी, तो हमने बाबा को कौन सा नाम दे रखा है, प्राणेश्वर, मीठे बाबा, हा? वो तो रिलेशन हो गया दोस्त का, नाम कौन सा दिया है आपने बाबा को, पर्सनल माय बाबा, और डियर बाबा, लाडले बाबा, और सिकिलदे बाबा। दिलाराम बाबा, बूढ़ा बाबा, तो बापूओं का बापू। तो हर एक ने क्या किया है, एक अपनी पर्सनल रिलेशन, एक पर्सनल बाबा के साथ। तो इस पर्सनल रिलेशन में ना वफादारी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी बात को हम समझ ही नहीं पा रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ मिलावट हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कुछ कहा है हमारे लिए और हम उस बात को समझ ही नहीं पाए, तो क्या है वो? मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशंस में हो जाती है तो क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, दूरियां हो जाती है। जैसे सबसे जाना माना रिश्ता, और जहां अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता। फिर राजा और प्रजा, प्रजा और राजा, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में तो क्या हो जाएगा? विद्रोह हो जाएगा। जैसे सेना और सेनापति, जैसे बच्चे और स्टूडेंट, आपस में क्या होनी चाहिए? एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसी के आधार पर क्या होंगी? वफादारी होंगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? बेवफा हो जाएंगे। तो बाबा से हमने कितने सारे संबंध जोड़ रखे हैं। बच्चा हूँ तो बच्चे के रूप में बाबा ने मुझे मुरली में कौन सी डायरेक्शन दी है, और उस अनुसार मैं कुलदीपक बना हूँ, वफादार कितनी परसेंटेज में बना हूँ। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो उतना मैं वफादारी से बैठा हूँ बाबा के सामने, या आँखें बंद हो रही है, झुटके आ रहे हैं? आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि सामने रात को भी स्टीमर आते थे, तो जब तक सामने वाले की जेब खाली नहीं होती थी तब तक बाबा छोड़ता ही नहीं था। तो सामने वाले की ब्रह्मा बाबा, तो फिर बाबा ने बताया, देखा मैंने कितना समझदार रथ चुना है, कितना होशियार रथ चुना है, अनुभवी रथ चुना है। फिर बाबा ने कहा कि ये सिर्फ सामने वाले को लूटने वाला ही नहीं था, लेकिन गावड़े का छोरा भी था। कभी कभी बाबा ने 10 आने में क्या किया था? अनाज भी बेचा था। तो वो रूप भी बाबा का बताया शिव बाबा ने, कि ब्रह्मा बाबा कैसे पहले गावड़े का छोरा था, फिर कैसे बना इतना बड़ा व्यापारी, फिर बाबा वायसराय के घर में भी जाते थे तो कैसे जाते थे? थाट से, जैसे कि अपना घर समझ के, इतना अथॉरिटी से। तो हम भी बाबा के महावाक्य सुना रहे हैं, तो बाबा ने हमें सिखाया, आपको भी उतने अथॉरिटी से सुनाने हैं। सामने वाला बड़ा है नहीं, उसका बाप हमारे पास है, शिव बाबा हमारे पास। हमें रीड बकरी नहीं बनना है कि सामने वाले साधु संत है और अब हम ये बात उनके सामने कैसे बोलेंगे। जैसे दादियों का एग्जाम्पल है ना, मनोहर दादी को जब बाबा ने सेवा के लिए भेजा था, मनोहर दादी और कौन थी दादी के साथ में, गंगे दादी, हाँ, तो वहाँ किसी मठ में आश्रम में उनको स्थान मिला था। हाँ, तो अब मुरली में कुछ बातें आती थी तो वो उन बातों को स्किप कर देती थी। तो फिर बाबा को वो बात पता चली, तो जब दादी बाबा के पास आई तो बाबा ने उनके खूब मजे लिए। बाबा ने कहा, आप तो रीढ़ बकरी हो, शेरनी हो या रीढ़ बकरी हो, बाबा की कई राज को छुपा देती हो। लेकिन क्या है, समय अनुसार, समय स्थान व्यक्ति देखकर, जब हमारे से 100 लोगों की सेवा हो रही है तो सामने वाले एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत खुश रखने के लिए कुछ बातों को स्किप भी करना पड़ता है। तो ये मुरली क्या है? शेरनी का दूध है। उसके लिए बुद्धि भी क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। अब सामने वाले का नहीं है तो उसको पहले बनाना पड़ेगा ना, बनाने से पहले ही उसमें वो डाल दिया जाए तो वो ठहरेगा नहीं उसमें। तो उसको बनाने के लिए, जैसे बालवाड़ी के टीचर में और उस 12वीं के टीचर में अंतर होता है ना, तो उसी तरह जो जिस लेवल का है सामने वाला, उस रूप से बाबा ने मुरलियाँ चलाई। कई मुरली में आता है कि चोरी आदि नहीं करना है, किसी की चप्पल नहीं उठानी है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। तो वो जब मुरली हम पढ़ते हैं तो हंसी आती है कि ये बाबा क्या सुना रहा है आज, मैं तो कभी बीड़ी सिगरेट पिया नहीं, और मेरे लिए तो है ना, हाँ ठीक है आपके लिए नहीं है। तो वो उस समय बाबा के सामने बैठा हुआ होगा, तो उस हिसाब से बाबा ने वो मुरली चलाई थी। तो मुरली मुरली होती है। तो जब टेप रिकॉर्डर बाबा के पास आया तो बाबा बहुत खुश हुए कि देखो ये बच्चा मेरा नंबर 1 बच्चा है, जो मैं सुनाता हूँ वो मुरली पूरी याद करके फिर बाद में सुनाता है, देखो ये नंबर 1 बच्चा है। तो बाबा ने क्या किया, उस टेप रिकॉर्ड में बाबा मुरली भरते थे, पहले तो लिखते थे सिंधी में, फिर यीशु दादी उसका ट्रांसलेट करती थी हिंदी में और फिर उसको भेजा जाता था टाइप करके उस साइक्लोन पे, वो जो अनेक कॉपियां बना के भेजी जाती थी। फिर बाद में बाबा रिकॉर्ड करके भेजने लगे तो बाबा को बहुत खुशी हुई थी टेप रिकॉर्डर की। फिर वो मुरलियां भेजी जाती थी और फिर बाबा अव्यक्त होने के बाद भी कुछ सालों तक सप्ताह में एक बार साकार मुरली, ऑडियो मुरली चलाई जाती थी कि बच्चों को, नए बच्चों को फील आए कि साकार बाबा कैसे बोलते थे। अभी तो हम अव्यक्त बाप दादा से ही मिलते रहे, मधुबन में आए तो भी या सेंटर पर भी निमित्त जो टीचर है वो मुरली पढ़ के सुनाते हैं और हम सुनते हैं और सामने बाबा का चित्र देखते हैं और ऐसा फील करते हैं कि ये बाबा के महावाक्य स्वयं बाबा हमें सुना रहा है। लेकिन सप्ताह में एक दिन सद्गुरुवार के दिन होता था मधुबन में भी ऑडियो मुरली चलाई जाती थी, साकार मुरली। तो उस मुरली में और इस मुरली में भी अंतर है। उसमें कितने बार बाबा 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 कहते थे, बच्चे है ना, शुभ बाबा के प्रति बोलना है तो ब्रह्मा बाबा, बाबा बाबा शब्द का कितने प्यार से उच्चारण करते थे और बाबा भी बच्चों के प्रति कितना, बच्चे बच्चे कितनी बार वो शब्द यूज करते थे। तो वो फील आता है वो मुरलियां सुनने के बाद। फिर मुरली बाबा के बाद, साकार बाबा के बाद अव्यक्त बाबा की चली, लेकिन मम्मा की भी मुरली चली। मम्मा के भी मुरली को, मम्मा की क्लास को भी क्या कहा गया, मुरली कहा गया, क्योंकि वो तो है ही सरस्वती। तो मम्मा ने भी कई बातों पर प्रकाश डाला, मुरली सुनाई। वो दिल्ली वाला एक एग्जाम्पल हमने सुना है कि एक माता थी और उसका पति संपर्क में था लेकिन पवित्रता के लिए वो सहयोगी नहीं था। तो उसने सोचा, अपनी टीचर को पूछा, मम्मा आ रही है तो मम्मा के सामने ले जाए उसको। तो उन्होंने भी परमिशन दे दी। फिर मम्मा के सामने ले गए, मम्मा ने समझाया, बस हाँ हाँ करता रहा, लेकिन फिर वो मुस्कुरा के चला गया और सब समझ गए कि इसने तो बस हमें हाँ हाँ किया है। और डिबेट वो मम्मा से करता रहा। फिर मम्मा ने उसको लास्ट में कहा, चलो ठीक है, कल सुबह मुरली क्लास में आ जाना आप। तो देखो, पहले दिन तो उसको खास स्पेशल समझाने के लिए बैठे थे मम्मा कि कैसे काम विकार है, उसके कारण हम कैसे दुखी हुए हैं। समझाया तो था उसको, लेकिन समझाने। लेकिन दूसरे दिन जब मुरली में वो आया और मुरली में, बाबा की मुरली में उसने क्या सुना, दुशासन। दुशासन कि आपको दुशासन बनना है। आप सब मतलब उसमें वो द्रौपदी, हाँ, चीरहरण करने की कौन किया। तो उसको वो बात ऐसे तीर समान लग गई, क्योंकि मुरली डायरेक्ट बाबा के महावाक्य जब लगते हैं व्यक्ति को, तो वो उस बात पर पूरा परिवर्तन हो गया कि अरे मैं तो दुशासन हूं। तो मुरली की कौन सी कब बात किसको लग जाए और किस में कौन सा परिवर्तन आ जाए पता नहीं। इसलिए मुरली सुनाते समय हमें कौन सी स्मृति होनी चाहिए और मुरली सुनते समय हमें कौन सी स्मृति होनी चाहिए, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं एक आत्मा हूं और मुझे कौन सुना रहा है, स्वयं भगवान सुना रहा है। वैसे यहां भी सुनाया गया था कि एक कोई पत्रकार थे और वो आए थे मधुबन में, कोई प्रोग्राम था उसमें। तो उनको एक बात क्लासेस में या शिविर में अच्छी नहीं लगी, वो बात थी स्व परिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तन। तो उन्होंने कहा, ये कैसे पॉसिबल है स्व परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन, मैं बदल गया हूँ, दुनिया बदल ही नहीं रही है, मैं बदल चुका हूँ और दुनिया बदल ही नहीं रही है, ये आप कैसे एक प्रैक्टिकल लेवल पे बताओ तो वो बात वहां पे समझाई नहीं। फिर बाद में मुरली उसने सुनी और मुरली के बाद अब शिविर वालों को जाना था और जाते समय याद सौगात मिल रही थी और उस मुरली लिखने के लिए उनको क्या दिया जा रहा था, डायरी दी जा रही थी और उस डायरी पर हर पेज पर एक स्लोगन लिखा गया था, जो मुरली में स्लोगन आते हैं। तो दीदी जब सौगात देती थी या बड़ी दादी भी सौगात देती थी तो उस सौगात का अलौकिक रहस्य भी समझाती थी। उसके साथ उस स्थूल सौगात नहीं देते थे लेकिन उसके साथ उस ज्ञान खजाने को भी वो सौंपते थे। पूरी स्मृति के साथ अवेयरनेस के साथ सामने वाले को बताते थे कि ये क्या हम आपको दे रहे हैं, आप मधुबन से क्या लेके जा रहे हो। तो दीदी कहती थी कि आप कौन सा भी एक पेज निकालो, फिर उसमें जो स्लोगन लिखा हुआ था वो पढ़ के सुनाओ, देखो बाबा ने आपके लिए ये कहा है। तो उसको भी कहा दीदी ने कि आप ये पेज खोलो। उसने खोला और उसमें स्लोगन कौन सा निकला, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आखिर जाते जाते तीर लग ही गया। तो ये भगवान के महावाक्य, न जाने उस आत्मा के ऊपर जन्मों के जो बोझ है, जो कंफ्यूजन है, उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। पता नहीं कौन सी बीमारी है उसका क्या हो जाए, दवा उस मुरली से मिल जाए। पता नहीं कितने जन्मों से वो प्यासी आत्माएं हैं, उस मुरली की बूंदों से उसको प्यास बुझ जाए, उस अंधे को तीसरा नेत्र मिल जाए, आंख मिल जाए, उस अपाहिज को टांग मिल जाए हिम्मत की। तो ये मुरली क्या है, ज्ञान प्रकाश है। बात एक होती है छोटी सी, लेकिन उस बात को समझाने के लिए बाबा कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि अशरीरी बनना है तो अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा कि जैसे कि स्विच ऑफ, साइंस के उदाहरण दिए बाबा ने, स्विच ऑफ करना और स्विच ऑन करना। वैसे आपकी प्रैक्टिस है कि मैं इस देह में आया और इस देह से न्यारा हो गया। फिर बाबा ने कपड़े का उदाहरण दिया, जैसे वस्त्र आप पहनते हो, जैसे जिस स्थान पर जिस समय पर ऑफिस से आए और कोट उतार दिया। तो बिल्कुल कितने अलग अलग तरीके से एक ही बात बाबा को समझानी है। कभी सांप और मणि का उदाहरण दिया, बात एक ही बाबा को समझानी है। और कई बार मैंने देखा कि मुरली कैंची का भी काम करती है, हमारे बंधन तोड़ देती है, हमारे दुख दर्द तोड़ देती है। और कई बातों में मैंने देखा मुरली ढाल भी है। मुरली ढाल से हमें बाबा बचने की विधि नहीं बताता है, लेकिन बाबा खुद भी बचता है इस मुरली रूपी ढाल से। बाबा के पास भी वो ढाल है, वो खुद भी यूज करते हैं। क्या ड्रामा, कई बातें। बच्चे बाबा के सामने जाते थे, पूछते थे बाबा ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बच्चे की शादी, तो बाबा कहते थे वो तो उधर पूछो ना, ज्योतिष को जाके पूछो, ये मेरा काम नहीं है। तो बाबा अपने आप को भी इस मुरली की ढाल से सेफ कर लेते, छुड़ा लेते। तो ये मुरली क्या है, ज्ञान अमृत भी है। ये मुरली क्या है, ज्ञान तलवार भी है। लेकिन ये ज्ञान तलवार, ये ज्ञान अमृत कब काम आएगा, जब वो समय पर हमें मिलेगा। जैसे किसी राजा के पास, चक्रवर्ती राजा है, बहुत सुंदर तलवार है, उसने बहुत पराक्रम किए हैं, अभी वो जीत गया है और बड़े आराम से अपने महल में है। लेकिन दुश्मन क्या करता है, अचानक से छुपके से वार करने के लिए उसके महल में घुस जाता है। राजा सोया हुआ है और उसकी वो जानी मानी तलवार जिससे उसने कई युद्ध जीते हुए थे, तो वो तलवार एक संदूक में बंद पड़ी हुई है तालों के अंदर। अब वो दुश्मन सामने खड़ा है और राजा उसके संदूक के ताले खोलने में लगा हुआ है, बच पाएगा नहीं। तो ज्ञान मुरली मतलब प्रैक्टिकल, हम अप्लाई कब कर पाएंगे, जब समय पर वो स्मृति हमें आएंगी। तो समय पर ज्ञान में कब आएंगे, जब हम रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, जब वो मुरली हमारे अंदर। मराठी में मुरली का अर्थ और एक है, मुरली मतलब एब्जॉर्ब करना, कितना उसके अंदर वो समा गई है। जैसे गुलाब जामुन कितना चाशनी में डूबा हुआ है, या कोई ईंट है उसको आप पानी में डुबो देंगे तो वो पानी उसके अंदर समा जाता है। तो मुरली हमारे अंदर कितनी मुरली है,
हम गुलाब जाम है और मुरली चाशनी है।
व्यक्तिगत रूप से मुझे मुरली इतनी प्यारी क्यों लगती है, इसका सही सही सच्चे दिल से यही उत्तर है कि उस पढ़ाई से छूटने के लिए इस पढ़ाई में मैं लग जाता था। सार रूप में यही है कि बचपन में वो लौकिक वाली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बाबा मुरलियों में सुनाते थे कि बच्चे विनाश होना है, ये सब पढ़ाई आपको भूल जानी है, शास्त्र आदि। तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ लौकिक दुनिया का, कोई शास्त्र या कोई कादंबरी या कोई नॉवेल, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है।
हाँ, मुझे याद है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था,
जब BCA लास्ट ईयर में मैं था पूना में, तो टीचर एक दिन मेरे ऊपर चिल्लाई, कमलेश यू आर नॉट गुड लिसनर। और मैं फिर भी मुस्कुराया, टीचर ने मुझे खड़ा भी किया, बोले खड़े हो जाओ, मैं डांट रही हूं और आप मुस्कुरा रहे हो। तब मेरे मुस्कुराने का गुह्य राज ये था, ठीक है मैं गुड लिसनर नहीं हूं लेकिन गॉड लिसनर हूं, इस स्मृति मेरे पास थी। नहीं, लेकिन उस कारण से टीचर का प्यार मुझे मिला, बालवाड़ी से लेकर BCA तक हमेशा उन्होंने मुझे माय डियर करके संबोधित किया। नहीं, अलग अलग थे लेकिन प्यार समान था मेरे प्रति उनका। तो टीचर का भी प्यारा बनना है हमें, तो शिव बाबा के प्यारे बने हैं। उसकी निशानी क्या है? बाबा से प्यार मतलब मुरली से प्यार, उस मुरलीधर से प्यार होगा तो फिर उसमें समय का कोई बंधन नहीं होगा। बेल बजती रहे तो भी जो अनन्य टीचर है वो फैकल्टी रूम में भी जाके या सब स्टूडेंट जाने के बाद भी टीचर से पर्सनल मीटिंग करते रहते, इसलिए वो बेल के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो वो हमेशा पास विद ऑनर होते हैं। मुझे एक मुरली मिली 18 जनवरी 2016 की, मुरली का टाइटल है रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी किसी सब्जेक्ट पे फेल नहीं हो सकते। फेल होना मतलब फील करना। अब ये फील करना दो प्रकार का होता है, एक कभी अपमान होता है या कोई बात हमारे अंदर की नहीं हम तो कमज़ोर है, हमें पढ़ाने वाला कोई है नहीं। लौकिक में होमवर्क जब मिलता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात है, वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे सिखाया गया था और वो मुझे आ नहीं रहा था और मेरी मम्मी को भी नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत रो रहा था कि सबको आता है मुझे नहीं आता है। तो फिर मेरी मम्मी पहुंची टीचर के पास जो मुझे पढ़ाने वाली टीचर थी, फिर वो घर में आई और उसने मेरी मम्मी को सिखाया और फिर मम्मी ने मुझे सिखाया असेंडिंग और डिसेंडिंग। और इतना डर मैथमेटिक्स के प्रति मेरे अंदर घुस गया था उस जमाने में, तो कि ये डर नहीं होना चाहिए। कई बातें बाबा मुरली में संस्कृत बोलता है, इंग्लिश शब्द बोलता है, अभी तो हमारे पास एक गूगल है ना, तो उसको हम पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, अपने मन से ही हम अपना ही अर्थ लगा लेते हैं, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। वैरायटी टीचर हमारे पास है जिनकी मुरलियाँ यूट्यूब पे आ रही है, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उससे आप सुनेंगे तो वो बातें आपको एक्सप्लेन होते जाएंगे। एक बार मुझे याद है, एक कोई नई कन्या बहन जी उनको बिठा के चले गए, तो मुरली का टाइटल था होली हंस, तो उन्होंने बताया होली मतलब होली का त्यौहार होता है ना, और हंस मना कोई एक पंछी होता है। अब उस टीचर को होली शब्द का भी मीनिंग पता नहीं था और हंस पक्षी क्या होता है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो छोटी थी। तो हमें समझना है, बाबा के एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा, तब हम क्या हो सकेंगे, पास विद ऑनर होंगे, फेल नहीं होंगे। और फील करना है, फील उस लव को, आई लव मुरली, आई लव बाबा, उसके प्यार को समझना है, फील करना है, न कि उससे डरना है। तो टीचर का प्यार तभी मिलेगा जब हमारी पढ़ाई से रुचि होंगी। लेकिन कई बच्चे बड़े शातिर होते हैं, रेगुलर होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, टीचर के भी लाडले प्यारे होते हैं, इसलिए बाबा शब्द यूज करता है। कई अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, माया उनको नाक पकड़ लेती है, गुस्सा मार देती है, गिरा देती है, तो अच्छे अच्छे कैसे हुए फिर? अच्छे तो होते हैं लेकिन माया के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं?
तो उधर माया के भी अच्छे बन जाते
तो ये क्यों होता है? ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, रोज आते हैं, तो भी वो फेल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो कई कारणों से, उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनको जॉब करनी होती है, पढ़ाई के लिए पैसा कमाना पड़ता है, वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं सकते। जैसे एकलव्य का भी उदाहरण देखा, उनको अर्जुन जैसा गुरु, वैसा एटमॉस्फेयर, वैसे पढ़ाई के साधन भी नहीं मिलते, लेकिन वो नंबर वन चले जाते। और कुछ रेगुलर होते हुए भी तीखे। तो वैसे ही कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए, सब तो अच्छा अच्छा कह रहे हैं। मेरी मम्मी को बड़ी दिक्कत थी, कोई मुझे अच्छा कहता था तो ये किस एंगल से अच्छा है? मम्मी जब टीचर के पास आती थी कि देखो इसको कम मार्क्स मिले हैं, क्या हुआ, तो टीचर बोलती थी नहीं कमलेश वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा। मम्मी बोलती थी कहाँ अच्छा है, रिजल्ट में तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मम्मी कंफ्यूज हो जाती थी कि ये लोग उसको अच्छा क्यों बोलते हैं। मम्मी उनको समझाती थी टीचर को कि वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता है आपसे, वो अच्छा है नहीं। तो कई बार होता है कि वो अच्छी अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है, हम उसको याद कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं, वो उनको भी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं वो वही तक ही रह जाती है और हम धारण करने में कहीं कम न पड़ जाए। तो मुरली से प्यार मतलब वफादारी से उस फरमान पर चलना, उसको प्रैक्टिकल में धारण करना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसको समझना और उसको याद कर लेना। तो आई लव मुरली। अच्छा, ओम शांति।
Love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say. Whoa, oh, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Whoa, whoa, love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, oh, yeah, yeah. Love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I gotta know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, whoa, yeah, yeah. I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Whoa, whoa, love you more than I can say.